जिंदाबाद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हमसे है देश, जहां हम बात करेंगे लोकतंत्र की और उससे जुड़े कई पहलुओं की। मैं हूं कामायनी।
और मैं हूं कबीर। असल में मैं ये सोच रहा था कि अगर हम 15 साल पीछे मुड़कर देखें तो तब से लेकर अब तक जिंदगी कितनी बदल गई है ना। पहले सिर्फ चिट्ठियां थी, अब ईमेल है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। दुनिया कितनी छोटी हो गई है और बहुत ही तेज दौड़ने लगी है।
सो तो है।
पर इस बीच सामाजिक ढांचों का क्या हुआ? खासकर अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की, तो क्या आज भारत के गरीब नागरिक को सामाजिक न्याय प्राप्त है? क्या आज हर भारतीय का हित सुरक्षित है?
कबीर, तुम्हारे ये सवाल बहुत अहम है और चिंतन ही क्या, मुझे तो चिंता में डाल रहे हैं। तो क्यों ना आज इन्हीं पर चर्चा की जाए।
बिल्कुल,
चलो सुनते हैं बुलबुल बाग में न्याय को लेकर क्या बात छिड़ी है बेताल छब्बीसी की आज की कड़ी में।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, बेताल।
विक्रम जूनियर, आओ, तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। तुम्हें बुलबुल बाग का एक नया किस्सा सुनाऊं? बुलबुल बाग के लोकतंत्र के अंदर बूढ़े बरगद और पीपल के पेड़ के अलावा एक और अहम पेड़ था, वो था नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो नेक न्योले की निगरानी में रहता था और जिसमें न्याय की एक चिड़िया बैठती थी। एक बार वो चिड़िया कहीं उड़ गई, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। नेक न्योले ने चपल चींटी तक ये बात पहुंचाई।
चपल चींटी, बुलबुल बाग के इतिहास में ये सबसे बड़ी मुसीबत है।
माना बड़ी बात है, और वैसे भी बुलबुल बाग के बाकी दो पेड़ों के नीचे भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और कितने सारे काम हैं जो करने हैं, आप भी काम पर ध्यान दीजिए।
काम की होड़ में ये नहीं भूलना चाहिए कि काम क्यों कर रहे हैं। नेक न्योला शेख चंद सारस से मिलने गया।
शेख चंद, मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम उड़ना भी जानते हो और एक पक्षी दूसरे पक्षी को समझता भी है। तुम ही बताओ वो कहाँ जा सकती है, क्या तुम न्याय की चिड़िया को ढूंढ सकते हो?
अरे भाई, तुम चपल चींटी के पास नहीं गए?
गया था शेख चंद, पर वो तो व्यस्त लगी, और उसके अनुसार जब पेड़ वही हैं तो चिड़िया भी आ ही जाएगी।
बात तो ठीक ही कही है,
पर शेख चंद, वो न्याय की चिड़िया है, न्याय की, जिसका हमेशा बुलबुल बाग में रहना जरूरी है।
पर बुलबुल बाग में अब तो सब ठीक चल रहा है, और अगर न्याय की चिड़िया अगर कहीं चली भी जाए कभी, तो क्या दिक्कत है?
दिक्कत है शेख चंद, बुलबुल बाग में बहुत से काम हो रहे हैं विकास संबंधी, जैसे जुगनुओं की तैनाती। पर आपको पता है कि कितने ही जुगनुओं का इस तरह शोषण हो रहा है। उनसे 4 पहरों के बजाय 6 पहरों का काम लिया जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि बुलबुल घाटी के पुनर्जीवन में जहां नए पशु पक्षी वहां भेजे जा रहे हैं, उतने ही खदेड़े भी जा रहे हैं। तो कहां का पुनर्जीवन?
पर हमें इसकी खबर नहीं।
अरे खबर होगी कैसे, न्याय की चिड़िया जो उड़ गई है। जब बुलबुल बाग के निवासी को लगेगा ही नहीं कि उसे न्याय मिल सकता है, तो न्याय की मांग भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और सभी बाशिंदे शोषण को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेंगे।
चलो न्याय की चिड़िया को वापस लाने के प्रयास करते हैं, चपल चींटी को फिर से समझाते हैं।
बेताल छब्बीसी रे।
कमो, तुम्हें लगता है कि बुलबुल बाग में न्याय की चिड़िया वापस आएगी?
हाँ हाँ, बिल्कुल आएगी। न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है, याद है ना, न्यायपालिका यानी जुडिशरी लोकतंत्र का 3रा स्तंभ है।
हाँ, वैसे न्याय की चिड़िया की तरह न्याय का एक और प्रतीक है।
तुम्हारा मतलब है लेडी जस्टिस?
हाँ बिल्कुल, ठीक पहचाना तुमने। तो चलो देश विदेश में लेडी जस्टिस के बारे में कुछ जानते हैं।
देश विदेश से, देश विदेश से।
न्याय का प्रतीक यानी लेडी जस्टिस ग्रीक पुराण शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। 800 ईसा पूर्व लेडी जस्टिस एक भगवान के रूप में जानी जाती थी। यूनान में लेडी जस्टिस का नाम था थेमिस। ये माना जाता था कि थेमिस का मुख्य काम व्यवस्था, नियम और संयोजना करना है, जिसमें मौसम के क्रम की जिम्मेदारी भी आती थी, जैसे गर्मी से सर्दी तक और सर्दी से बसंत तक। साथ ही ये भी माना जाता था कि व्यक्ति विशेष के जीवन संचालन के नियम भी थेमिस ही गढ़ती थी, शुरुआत से लेकर अंत तक। उस समय के पुरुष प्रधान समाज में एक आधिकारिक पद का प्रतीक माना जाना भी लेडी जस्टिस की खास बात थी। थेमिस को दुनिया की सबसे पहली परामर्शदाता माना जाता है। लेडी जस्टिस की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली। यूनान की पौराणिक देवगाथाओं के अलावा उनकी कहानियां रोम तक भी पहुंची। यहां तक कि 22 ईसवी में वो रोम के सिक्कों में भी दिखने लगी और जस्टिसिया के नाम से जानी जाने लगी। समय के साथ साथ लेडी जस्टिस की छवि में भी बदलाव आया है। आज वो मूर्ति सभी न्यायालयों में खड़ी दिखती है। उसके 5 मुख्य चिन्ह हैं: आंखों की पट्टी, तलवार और तराजू बहुत पहले से मूर्ति का हिस्सा रहे, पर समय के साथ कलाकारों ने 2 और चिन्ह जोड़े। पहला एक रिबन और दूसरा है पृथ्वी। सभी चिन्हों में जो सबसे अहम चिन्ह है वो है लेडी जस्टिस के आंखों की पट्टी, जो निर्णय देने में निष्पक्षता का प्रतीक है। वहीं तराजू न्याय देते समय 2 पक्षों को बराबरी पर रखने का प्रतीक है। तलवार लेडी जस्टिस के निर्णय की बाध्यता का प्रतीक है। वहीं रिबन जो आकाश का प्रतीक है, और पृथ्वी, दोनों ही लेडी जस्टिस को आसपास के माहौल से जुड़े रहना दर्शाता है।
तो अब बताओ कबीर कि न्याय के बारे में तुम क्या समझे?
कमो, इसका मतलब तो ये हुआ कि भले ही लोकतंत्र आ गया हो, भले ही नियम कानून बन गए हो, बराबरी की बात हो रही हो, पर हमें फिर भी रुककर ये देखना होगा कि ये सामाजिक ढांचे कितने कारगर हैं। ये पूछना होगा कि हम किसी को पीछे तो नहीं छोड़ रहे।
बिल्कुल ठीक, और इसीलिए हमेशा बदलाव की जरूरत रहती है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दिशा में काम करते रहते हैं, जैसे आज जानकार हैं कहते में हमारे गेस्ट।
वो कौन है?
2 बहुत ही बहादुर महिलाएं जो खुलकर बोलती हैं, आवाज उठाती हैं। उनका संस्थान सतर्क नागरिक संगठन भी इस दिशा में काम करता है, नागरिकों को जानकारी के लिए सशक्त बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी।
जानकार है कहते, जानकार है कहते।
तो ये बताइए कि सामाजिक न्याय और सूचना का अधिकार आपस में किस तरह जुड़े हैं?
मुझे लगता है कि सूचना का अधिकार कानून जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही जो हमारे सबसे पिछड़े और सबसे गरीब वर्ग हैं उन्होंने किया है। अभी हाल ही में हमने एक शोध किया था, एक रिसर्च की थी, जिसमें पूरे देश में देखा गया कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है और कौन कर रहा है। तो ये जो रिसर्च हुई, जो स्टडी हुई पूरे देश में, उसमें ये निकल के आया कि मात्र 5% RTI एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि सरकारी अधिकारी लगाते हैं। बाकी जो हमारे देश का नॉर्मल नागरिक है वो एप्लीकेशन लगाता है, सूचना के अधिकार कानून में लगाती है और निकालते हैं सूचना। ज़्यादातर सूचना मांगने वाले लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ऐसे ऐसे मजदूर, ऐसे किसान, ऐसे महिलाएं जो घर में रहती हैं और अपने परिवार का पोषण करती हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूरी करके, इन लोगों ने सूचना के अधिकार में अर्जियां लगा के अपने बिल्कुल मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी ली है और उस जानकारी को इस्तेमाल करके सरकार को जवाबदेह बनाया है, जिससे कि उन्हें न्याय मिले, जिससे कि उन्हें जो उनके अधिकार हैं जो नहीं, जिनसे उनको वंचित रखा जा रहा है वो मिले, उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं जो अलग अलग स्कीम्स में उनको मिलने चाहिए हैं, चाहे वो पेंशन की स्कीम हो, चाहे राशन की स्कीम हो, वो उनको मिले। और लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपने अधिकार लिए हैं और अपनी जो न्याय की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया है।
तो इसमें अगर हम देखें कि मजदूर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सामाजिक न्याय में, तो सामाजिक न्याय में एक है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में मजदूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नरेगा में हमें काम क्यों नहीं मिल रहा, अगर हमने नरेगा में काम करा है तो हमें वेतन क्यों नहीं मिल रहा, 18 महीने तक की डिले क्यों हो रही है हमें वेतन मिलने में, काम कैसे डिसाइड होगा कि गांव में क्या काम हो। अगर आप राजनीतिक न्याय की बात करें तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पूछने के लिए अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि से, अपने सांसदों से, अपने MLA से, कि आप किससे पूछ कर अपना काम कर रहे हैं, आप हमसे बातचीत करिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर सवाल उठाइए, नरेगा का बजट आप कितना दे रहे हैं, आप बाकी जो हमारी सामाजिक जितनी भी सेवाएँ हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो स्कूल हो, उसके ऊपर आप कितना बजट दे रहे हैं, जो आपको खुद को एक आपका विकास का फंड मिलता है वो आप किससे खर्च करके पूछ रहे हैं। और अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो उसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही हमारे गांव में, जो जो हमारे सारे मिलने चाहिए राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स अलग अलग कानून के तहत, उनका कैसे आज के डेट में क्रियान्वयन हो रहा है, उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो सारी ही लड़ाइयों में सूचना का अधिकार का इस्तेमाल हो भी रहा है बहुत जम के, और आगे भी लोग इसको देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं।
अमृता जी और अंजलि जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए दिल से में सुनते हैं इब्ने इंशा की ये नज्म, ये बच्चा किसका बच्चा है।
ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, जो रेत पे तन्हा बैठा है, न इसके पेट में रोटी है, न इसके तन पर कपड़ा है, न इसके सर पर टोपी है, न इसके पैर में जूता है, ना इसके पास खिलौने में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना इसकी जेब में धेला है, ना इसके हाथ में पैसा है, ना इसके अम्मी अब्बू हैं, ना इसके आपा खाला हैं, ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा सबका बच्चा है। दिल से,
दिल से। और अब समय है आपसे विदा लेने का,
पर उससे पहले हमेशा की तरह हम आपके लिए छोड़ जाएंगे एक सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट।
तो आज का सवाल है, न्याय की प्रतीक लेडी जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। जवाब देने के लिए 07966210428 पर एक मिस्ड कॉल दें और हम आपको वापस कॉल करेंगे।
और हाँ, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताइए, अपनी कविताएं और गाने भी जरूर भेजें, और ईमेल एड्रेस है freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 09958747972।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है।
तो अब हम आपसे लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि हमसे है देश की अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, खुश रहिए, आबाद रहिए
और जागरूक रहिए।